بھائی یہ جو دور دور بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے تھوڑا قریب آ جاؤ, مجمے کے ساتھ آ جاؤ, آپ لوگ چھوڑ دو اپنی جگہیں, چھوڑ دو, آ جاؤ پاس میں, آ جاؤ, آواز تو سب جگہ پہنچ جائے گی. یہ تو بہت سمجھداروں کا مجمع ہے, بہت اچھے لوگ ہیں ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اجتماع تک پہنچایا. رات آپ پنڈال میں سوئے ہیں صرف اللہ کے لیے, آنا ہمارا صرف اللہ کے لیے ہے. آ جاؤ, ہر آدمی اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھ جاؤ, آگے بڑھ جاؤ. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. اللہ کے دین کی نسبت پر جو قدم اٹھتے ہیں اللہ کو بہت پسند ہے. سامان وہیں چھوڑ دیں انشاءاللہ, آپ کے سامان کو کچھ نہیں ہوگا. جو جہاں ہے وہاں سے آگے بڑھ جاؤ, مجمع کے ساتھ آ کر بیٹھ جاؤ. تب بھی کچھ لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, بھائی آپ ہی تشریف لے آؤں, بات سب سے ہے ماشاء اللہ. اطاعت کرنے والا مجمع ہے, بات ماننے والے مجمع ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اطاعت والا بنا دے. زندگی اسی لیے دی گئی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. آ جاؤ آگے, آ جاؤ. میرے محترم بھائیو, دوست بزرگو, اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے. کرتا اللہ اپنی قدرت سے ہے. کرتا کون ہے؟ ارے بولو, اللہ کرتا ہے. اللہ کے سوا کسی میں طاقت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے نتیجے میں دنیا میں کچھ اسباب رکھے ہیں. اس کا نتیجہ آدمی حاصل کرنا چاہے تو ان اسباب کو اختیار کرے. ان سبب میں اور نتیجوں میں اللہ نے اپنی قدرت سے ایک جوڑ رکھا ہے کہ جب بھی وہ سبب وجود میں آئے گا, اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ, اس کا ریزلٹ, اس کا پرینام ہم سب کو دکھائے گا. اس سبب سے کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ ترتیب اللہ کی بنی بنائی ہے. آدمی کو بھوک لگتی ہے تو ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ اس بھوک کو دور کرنے کے لیے میں روٹی کھاؤں, چاول کھاؤں, بسکٹ کھاؤں, اناج کھاؤں. اس کو یہ پتا ہے کہ میری بھوک اس سے دور ہوگی. کوئی کپچی کھاتا ہے؟ کوئی ریتی کھاتا ہے؟ مٹی کھاتا ہے کوئی؟ بولو. پیاس لگی ہے, ہر ایک آدمی کو معلوم ہے کہ میری یہ پیاس پانی سے بجھے گی, تو وہ پانی تلاش کرتا ہے. آسانی سے مل گیا تو ٹھیک ہے, خریدنا پڑے تو بھی آدمی اس کی قیمت دے کر خرید لیتا ہے. کیروسین نہیں پیتا ہے, پیٹرول نہیں پیتا ہے. اس کو پتا ہے کیونکہ اللہ نے پیاس بجھانے کا سبب پانی کو بنایا ہے. انسان کی بھوک دور کرنے کا سبب اللہ نے کھانے کو بنایا ہے. آدمی دن بھر کام کر کے تھکتا ہے اور تھک کر پھر اس کو پورے جسم اس کا تھکان سے جب چور چور ہو جاتا ہے تو یہ اپنے لیے کیا تلاش کرتا ہے؟ بولو, سونے کی جگہ تلاش کرتا ہے کہ کہیں سونا مل جائے, کھٹیا مل جائے, پلنگ مل جائے, بستر مل جائے. جہاں بھی جگہ ملے گی آدمی پڑے گا, سو جائے گا. یہ چھ آٹھ گھنٹے سو جائے گا, اس کی نیند ختم, اس کی تھکان دور ہو جائے گی. وجعلنا نومکم سباتا, یہ اللہ کی ترتیب ہے کہ انسان کی نیند, اس کی ساری تھکان دور کرنے کا اللہ نے ذریعہ بنایا ہے. یہ دنیا کا, پوری دنیا اللہ نے اسباب आदमी को अपना घर चलाने के लिए पैसे चाहिए, तो आदमी क्या करता है, सबब के लिए मेहनत करता है, मजदूरी करता है, कारोबार करता है, लारी चलाता है, रिक्शा चलाता है, टेम्पी चलाता है, फेरी करता है, खेती करता है, नौकरी करता है। उसको पता है आसमान से नोटों की बारिश नहीं होती है। हातुमर फरमाते थे कि आसमान से पकी पकाई रोटियां नहीं उतरती है। अल्लाह ने इसके लिए क्या है बोलो, इंसान की मेहनत को सबब बनाया कि आदमी इसके लिए कोशिश करे। इसलिए आप देखो रात के सन्नाटे में सारी दुनिया सो जाती है और जैसे ही सुबह हो जाती है इसके साथ क्या हो जाता, पूरी दुनिया में नकल हरकत शुरू हो जाती है। सड़कों पर देखो, बसों में देखो, स्टेशनों पर देखो, ट्रेनों में देखो, आदमियों की भीड़ सब अपने रोजी रोटी कमाने के लिए भागदौड़ करते हैं। ये कोई ऑटोमेटिक नहीं है, समझते हो? हाँ, ये सारी सिस्टम अल्लाह ही ने बनाई है। किसने बनाई है बोलो? अल्लाह ही ने। अल्लाह के सिवा कोई ये सिस्टम नहीं कर सकता है कि रात अल्लाह ताला ने पर्दे की चीज बनाई और नींद अल्लाह ताला ने थकान दूर करने की चीज बनाई और दिन को अल्लाह ने इंसानों के माश कमाने का, रोजी रोटी कमाने का जरिया बनाया कि दिन में रोजी रोटी कमाओ। ना वजअलना नहार माश, ये पूरी सिस्टम है अल्लाह की। ये अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू ने पूरे असबाब पैदा किए हैं ताकि इंसान दुनिया में सुख चैन से जीवे। ये अपनी जिस्मानी जरूरतों के लिए परेशान मारा मारा न फिरे। रोटी उसी ने बनाई, चावल उसी ने बनाए, घी उसी ने बनाए, पानी उसी ने बनाए, हवा उसी ने बनाई, सवारियां उसी ने बनाई, सड़कें भी उसने बनाई। ये जितने रोड रास्ते हैं ना, ये अल्लाह ही ने बनाए। सब चीजें अल्लाह की बनी बनाई हुई है इंसानों के लिए ताकि ये दुनिया के अंदर परेशान ना हो। तो जैसे ये दुनिया अल्लाह ने इसके सारे कामों को असबाब के साथ जोड़ के रखा है, ऐसे ही हक ताला शानहू ने सारे दुनिया के इंसानों के मरने के बाद एक आखिरत की जिंदगी रखी है। और सुनने वाले भाइयों, सारे इंसानों के लिए क्या बनाई बोलो? आखिरत बनाई है। एक आखिरत, ये दुनिया तो थोड़े वक्त के लिए है, पूरी दुनिया आदम अलैहिस्सलाम के जमीन पर आने से लेकर कयामत के सूर फूंकने तक बहुत थोड़ा इसका अर्सा है करीब। आखिरत के, आखिरत तो ऐसी चीज है कि अल्लाह ने इसका कोई किनारा ही नहीं रखा है, इसका कोई अंत और छेड़ा ही नहीं रखा है, वो हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए है। हर इंसान दुनिया के अंदर आया है 40, 50, 60, 70, ये अपनी मुद्दत, अपनी उम्र की मुद्दत पूरी करके यहां से चल बसेगा। हमसे पहले इस दुनिया में लाखों करोड़ आए गए, इस वक्त भी लाखों करोड़ हैं, रहेंगे। जब इनका वक्त आ जाएगा चले जाएंगे, फिर आएंगे फिर जाएंगे, फिर आएंगे फिर जाएंगे। दुनिया ऐसे ही आने जाने का घर है। हा कदर दुनिया नुजूल वर्सी हाल को, दुनिया में आओ और चलो, आओ और चलो, आओ और चलो। लेकिन आखिरत क्या, आखिरत में जो आ गया आ गया, अब वो चलेगा नहीं कहीं, अब कहीं नहीं जाना। क्या आखिरत का है, ये हमेशा का घर है, हमेशा रहने की जगह है। अल्लाह ताला ने जैसे दुनिया में एक सिस्टम बनाई है, राहत और तकलीफ, सुख और दुख, खुशी और गमी, ये दुनिया में कुछ लोग खुश हैं, कुछ गम हैं, कुछ राहत में हैं, कुछ तकलीफ में हैं, कुछ की जिंदगियां जीवन सुखी है, कुछ अपने जीवन के एतबार से दुखी है। ऐसे ही अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू इंसानों को आखिरत के अंदर इनका बंटवारा कर देगा। आखिरत में क्या हो जाएगा बोलो? बंटवारा हो जाएगा, हाँ, तकसीम हो जाएगा। कि कुछ सुखी हैं हमेशा के लिए सुखी हैं, कुछ खुश हैं तो इनकी खुशियां हमेशा के लिए हैं, कुछ राहत और नियामतों में हैं तो कहा अल्लाह ताला इनको हमेशा की राहतें और नियामतें देगा। और ऐसे इंसानों का एक मजमा दुख की हालत में होगा आखिरत में, गम और परेशानियों में होगा। वजूह यौम इदिन नासिर, बहुत से लोग होंगे थके हुए चेहरे, इन पर जिल्लत होगी, इन पर गम होगा। एक हालत में नहीं, जैसे दुनिया में सब एक हालत में है, एक ही मोहल्ले में एक जगह पर शादी है वहां खुश है, और उसी जगह उसी मोहल्ले में दूसरे किसी घर में किसी की मैयत है वहां सब दुखी है। एक ही मोहल्ले में 50 आदमी का मोहल्ला है तो क्या है बोलो, एक जगह पर शादी है तो सब छोटे बड़े खुश, एक जगह मौत मैयत है तो सब दुखी हैं छोटे बड़े। ये सिस्टम अल्लाह ताला आखिरत में बनाएगा, लेकिन इसकी बुनियाद क्या होगी कि इसकी बुनियाद दूसरी चीजें होगी। जैसे अल्लाह ने दुनिया को दारुल असबाब बनाया है, ऐसे आखिरत को भी अल्लाह ताला ने दारुल असबाब, असबाब का घर बनाया है। वहां की राहतों को, वहां की खुशियों को, वहां के चैन सुकून को, वहां की इज्जत को, वहां की हमेशा की तंदुरुस्तियों को अल्लाह ताला ने असबाब के साथ जोड़ के रखा है। उसको अल्लाह ताला असबाब के साथ जोड़ देगा, अल्लाह ही देगा, कौन बोलो, अल्लाह ही देगा। लेकिन इसकी एक सिस्टम अल्लाह ने बना के रखी है, अल्लाह का अपना एक दस्तूर है। वो ऐसी आखिरत के गम परेशानियां तकलीफें मुसीबतें जिल्लतें परेशानियां, इसको भी अल्लाह ने असबाब के साथ जोड़ के रखा है। ये कोई अलर्ट अप मामला नहीं है कि तू जन्नत में चला जा, तू दोजख में चले जा, तू खुश हो जा, तू दुख हो जा, नहीं ऐसा नहीं होगा। वहां दुनिया में भी ऐसा नहीं है, दुनिया में भी अल्लाह ताला का निजाम अलर्ट अप नहीं है, वो हकीम है। अल्लाह के सिफाती नाम में एक नाम हकीम है, हकीम, हकीम का माना जिसका हर फैसला हिकमत अकलमंदी और समझ से भरा हुआ होता है। हम नहीं समझ सकते, हमको जाहिर में कोई चीज तकलीफ देने वाली गम देने वाली समझ में आती है, लेकिन इसके पीछे अल्लाह की हजारों हिकमतें होती हैं। कि हाईवे पर कोई ट्रक थी जिसमें शकर की गुन और शकर की बोरियां भरी हुई थी, इसको एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी खड्डे में गिर गई, बोरियां टूट गई, फट गई, कट गई और उसकी शकर सब गिर गई, तो जाहिर में तो नुकसान है। लेकिन अल्लाह वहदहु ला शरीक लहु हकीम होता है, इसके फैसलों में हिकमत है कि जहां ये गिरी है ना वहां हजारों चूंटियां हैं, हजारों मकोड़े हैं। अल्लाह ताला की ऐसी बहुत सारी मखलूक होती हैं, इन सब के लिए अल्लाह ताला ने स्वीट का इंतजाम कर दिया होता है, वरना कोई वहां शक्कर डालने जाता, बोलो किलो दो किलो शक्कर थैली में भर के कोई जगह डालने जाता, किलो चूतियां तुम खाओ, ए मकोड़े तुम खाओ, ऐसा कोई करता? अल्लाह की हिकमत है, हम नहीं समझ सकते इसको। हर चीज क्वालिटी ऑफ मामला नहीं है, बहुत समझने की चीज है कि हम सब ईमान के रास्ते से अल्लाह की कुदरत को समझें, अल्लाह के फैसलों को समझें, अल्लाह की हिकमतों को समझें। तो उसने आखिरत को भी इंसानों के सुख दुख को तकसीम किया है, लेकिन इसके असबाब हैं। क्या इसके असबाब क्या है? इसके असबाब ईमान और आमाल है, ईमान और नेकियां हैं, ईमान और भलाइयां हैं। कि आदमी अपने दिल में ईमान बसावे, ईमान अंदर राशिक करे, मजबूत करे, दिल की गहराइयों के अंदर ईमान उतार दे, अल्लाह की अजमत, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की किबराई का सिक्का अपने दिल की गहराइयों के अंदर बिठा दे। ईमान के रास्ते से क्या है? अल्लाह को, एक अल्लाह जो अपनी जात में एक, अपनी सिफात में एक, हाँ, इसका ना कोई बाप है, ना इसकी कोई औलाद है, ना उसकी कोई बीवी है, ना इसका कोई कुंबा और कुटुंब खानदान है, ना इसके कोई भागीदार है। फरिश्ते इसके भागीदार नहीं है और ना अल्लाह ताला के कोई मुशीर है, अल्लाह ताला की कोई कैबिनेट नहीं है, कोई मजलिस से शूरा अल्लाह मियां की नहीं है कि जिसमें 5-25 बड़े फरिश्ते हों, 5-25 बड़े पैगंबर हों और सबसे मिलजुल कर मशवरा करके अल्लाह काम करता हो, नऊज़ु बिल्लाह, ऐसा नहीं है। वो एक अकेला है, अल्लाहुस समद, सारी कायनात उसकी मोहताज, अपने वजूद में पैदा होने में भी उसकी मोहताज और अपने खत्म होने में भी क्या है बोलो, अल्लाह की मोहताज है। कोई आदमी अपने मन से पैदा नहीं हो सकता है अपनी मशीयत अपनी चाहत से, और कोई आदमी अपनी चाहत से मर नहीं सकता है। हर आदमी की मौत जिंदगी किसके कब्जे में है, एक अल्लाह के कब्जे में है। आदमी की बीमारी तंदुरुस्ती अल्लाह के कब्जे में है, कोई बीमारी आदमी को मौत नहीं दे सकती, याद रखें इसको। बीमारी से आदमी नहीं मरता है, उसका अल्लाह की तरफ से वक्त लिखा हुआ होता है। अल्लाह की तरफ से क्या लिखा होता है, वक्त। बीमारी तो अल्लाह ने बहाने बनाए, किताबों में है कि अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों को पैदा किया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हवाले अल्लाह ने वही का काम दिया, मिकाइल को अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर सिस्टम अता की मुख्तलिफ चीजों को सप्लाईज करने की, इसराफिल के हवाले अल्लाह ने सूर किया कयामत का सूर फूंकने की, और इसराइल के अल्लाह ने हवाले किया रूहों को कब्ज करने की, जिस्मों में रूह है इसे कब्ज कर लो। तो हजरत इसराइल सलाम ने अर्ज किया कि अल्लाह ये तो ऐसा काम है कि लोग मुझे बहुत बुरा कहेंगे, मरना तो कोई नहीं चाहता है, मरना तो कोई नहीं चाहता है, हर एक आदमी को अपनी जिंदगी से फितरी मोहब्बत है, कोई मरना नहीं चाहता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास हजरत इसराइल अलैहिस्सलाम इनकी रूह लेने के लिए गए, है ना, कि क्यों आए हो, कि तुम्हारी रूह लेने के लिए, तो एक तमाशा मार दिया हजरत इसराइल अलैहिस्सलाम को। ये अजीब चीज है, इंसान की अपनी फितरी तौर पर मोहब्बत होती है अपनी जिंदगी से। तो हजरत इसराइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तो बहुत बड़ी मतलब कि लोगों की बुरा और लोगों की मतलब ये है कि बुरी चीजें सुनने का काम है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम फिक्र न करो, मैंने इसका एडवांस इंतजाम कर लिया है। मैंने क्या कर लिया बोलो, एडवांस इंतजाम कर लिया है कि मैं दुनिया में बीमारियां पैदा करूंगा। क्या पैदा करूंगा, बीमारियां। रूह तो तुम कब्ज करोगे, लोग नाम देंगे बीमारी का, तुम्हारा कोई नाम नहीं देगा। इसलिए लोग क्या बोलते हैं बोलो, बीपी बढ़ गया इसलिए इंतकाल हो गया, बीपी घट गया इसलिए, डायबिटीज बहुत बढ़ गया था बोले कैंसर हो गया था इसलिए कैंसल हो गया ये। बोलते हैं कोई मलकुल मौत को याद करता है, हालांकि पक्की बात यही है, हमारा अकीदा यही है, कोई बीमारी नहीं मारती आदमी को, समझते हो। हाँ, अल्लाह की तरफ से हरेक की एक फिक्स डेट है, घड़ी है, ये अल्लाह तय करता है। इन अजल अल्लाह इज़ा जा अला युअख्खर, एक मुद्दत होती है अल्लाह की तरफ से, जब वो आ जाती है किसी के हक में किसी को मोहलत नहीं दी जाती है। इंसान की रोजी भी तय है, इंसान की मेरे दोस्तों भाइयों इसकी मौत जिंदगी भी तय है, यहां तक कि दुनिया में आने के बाद कौन अच्छा बनेगा, कौन नेक होगा, कौन बुरा बनेगा, ये भी पहले से तयशुदा होता है, ये सब अल्लाह करता है। उस अल्लाह को पहचाने, उस अल्लाह को मेरे दोस्तों भाइयों ऐसे माने जैसे इसके मानने का हक है, उसकी अजमत को, उसकी किबरियाई को, इसकी बड़ाई को अपने दिलों के अंदर उतारें, अपने जबान के बोल को बदलें। क्या करें बोलो, जबान के बोल को बदलें। ये अल्लाह ने किया, अल्लाह ने चाहा इसलिए हुआ, अल्लाह नहीं चाहता तो नहीं होता, ये किसी ने कुछ नहीं किया। आदमी पर हालात और परेशानी आती है तो आदमी इधर उधर देखता है, इधर उधर मत देख, हालात तो ऊपर से हैं। हालात किधर से हैं, ऊपर से हैं। अफलातून एक बहुत बड़ा फिलॉसफर दुनिया में गुजरा है, غالب حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پیغمبر خدا سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتاؤ یہ آسمان پورا جو ہے نا یہ کمان بن جاؤ جس سے تیر پھینکا جاتا ہے کمان بن جاؤ اور زمین پر جتنے حوادثات ہیں مصیبتیں ہیں پریشانیاں ہیں یہ تیر بن جاؤ اور تیر پھینکنے والا اللہ ہو کون پھینکے بولو ان حوادثات کی شکل میں تیر دھنا دن زمین پر پھینکے تو آدمی کے بچنے اور بچاؤ کی کیا شکل ہو سکتی ہے آدمی کے بچنے کی بچاؤ کی کیا شکل ہو سکتی ہے تو پیغمبر خدا نے جواب دیا کہ جو تیر پھینک رہا ہے نا اس کے قدموں میں جا کر بیٹھ جا جو تیر پھینک رہا ہے کہاں بیٹھ جا بولو اس کے قدم پر جا کر بیٹھ جا بات یہ ہے ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں تو سب سے پہلے آدمی اندر کے ایمان کو مکمل کرے ایمان اندر کا یقین اللہ کی ذات کو پہچانے اور اپنے زبان کے بول کو بدلے ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرے بھئی اللہ نے دیا میری اپنی محنت کا کوئی دخل نہیں میرے دماغ کا میری تدبیر کا میرے آئیڈیا کا کوئی دخل نہیں ہمارے زبان کے بول جو ہوتے ہیں نا بعض مرتبہ ایسے ہوتے ہیں جو جس سے آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ معاف کرے ہم اللہ سے کراس کر کے باتیں کرتے ہیں ابھی کیا کرتا ہے اللہ میاں کی اوور ٹیک کرتا ہے ہاں اونچو نے آپڑے آپڑے لے چھو کو بیجو کیا بول رہا ہے بھائی وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے تجھے سب کچھ دیا تیرا ہگنا مدنا بند کر دے دنیا کی کون طاقت تجھے ہگانا مٹانا چالو کر آدمی اللہ کو بھول کر آگے کی باتیں کرتا ہے یہ زندگی بننے کا سب سے بڑا سبب ہے آدمی کا کلمہ اندر کا یقین اللہ سے تعلق اللہ کی ذات و صفات کا یقین خدا کی قدرت کا خدا کے علم کے اس کے رزاق ہونے کا یقین موت زندگی اس کے قبضے میں ہے سکھ دکھ اس کے قبضے میں ہے تکلیف و راحت اس کے قبضے میں ہے اسی نے یہ سات آسمان بنا یہ کوئی آٹومیٹک نہیں ہے اسی نے یہ زمین اسی نے بنائی الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا کہ ہم نے زمین کو ایسے بنایا ہے کہ زندے اس پر رہ سکیں اور مردے اس میں دفن ہو سکیں کہ مردوں کو دفن کر دو پھر ان کو اندر زمین کے اندر کیا ہو جاتے بولو یہ اللہ کی قدرت سے مٹی ہو جاتے ہیں اور زمین کے اوپر لوگوں کے رہنے سہنے کے لیے گھر مکان بنا کے لیے کھیتی باڑی بنانے کے لیے سڑکیں بنانے کے لیے پل بنانے کے لیے زمین کے اندر اللہ نے یہ ساری سسٹم بنا کے رکھی الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا اس میں زندوں کے لیے بھی فائدے ہیں مردوں کے لیے بھی فائدے ہیں آدمی جلا بھی دیا جائے تو بھی راکھ بھر کر زمین میں چلا جاتا ہے سڑ گل جاوے تو بھی کہاں چلا جاتا ہے بولو مٹی میں چلا جاتا ہے یہ کون کرتا ہے بولو اور سونے والوں کون کرتا ہے اللہ کرتا ہے اللہ کے سوا کسی کی طاقت نہیں ہے اس نے سات زمینوں کو بنایا سات آسمانوں کو بنایا زمینوں پر پہاڑ بنائے کتابوں میں ہے زمین جب بنائی تو یہ ہلتی تھی یہ اپنے پہلے دن میں یہ ہل رہی تھی فرشتوں نے عرض کیا ہے باری تعالیٰ یہ تو ہل رہی ہے یہ ہل رہی ہے اگر یہ ہلتی رہے گی تو اس پر عمارتیں اور یہ سب چیزیں کیسے قائم رہے گا اللہ کا تم فکر نہ کرو میں اس کا انتظام کر دیتا ہوں رات آئی تو اللہ نے اس پر پہاڑ پیدا کر دیا ہاں جیسے کوئی پٹیا ہلتا ہے تو کیا کرتا ہے بولو چھلا اور ہتھوڑی لے کے تھوکتے ہیں تو پٹیا فٹ ہو جاتا ہے اللہ نے جہاں پر بھی پہاڑ بنائے یہ سارے پہاڑ اس لیے بنائے تاکہ یہ زمین ہلے نہیں ورنہ یہ ہلتی تو بولو چلنا کتنا مشکل ہو جاتا مکان بنانا کتنا مشکل ہو جاتا کوئی عمارت اس پر قائم نہ ہو سکتی زندگیاں دوبھر ہو جاتی اللہ نے پہاڑوں کو کھیلا نما بنا کر ٹھوک کر زمین کو فٹ کر دیا مضبوط کر دیا اور اس پر اللہ تعالیٰ نے پانی اللہ نے ندیاں دریا سمندر تالاب اور اللہ تعالیٰ شانہو نے اس زمین کے اوپر پھل پھول گلے اناج سبزیاں یہ ساری چیزیں اللہ اپنی قدرت سے پیدا کرتا ہے. یہ اللہ کی بنی بنائی سسٹم ہے, وہ ہمیشہ کے لیے چیز چلتی رہے گی, کبھی اس کے خزانے میں اس کی کمی نہیں آئے گی. ہاں گیہوں کے کھیت میں کسان ایک دانہ ڈالتا ہے, اس پر ایک بالی اگتی ہے, ایک بالی میں کئی دانے ہوتے ہیں, ایک کا کئی دیتا ہے اللہ تعالیٰ, کئی گنا بنا کر اللہ دیتا ہے. لے جاؤ لے جاؤ, وہ کسان اس زمین کو ایک فٹ کھودے, دو فٹ کھودے, پانچ فٹ کھودے, دس فٹ کھودے, اندر سے چاول گیہوں کی بوریاں نکلتی ہے, اس کے ڈگلے نکلتے ہیں اندر سے, کبھی نہیں نکل سکتے. یہ اللہ کا نظام ہے, وہ بناتا ہے اس کو. اس اللہ کو جاننے, اس اللہ کو پہچانے, اس کا یقین, جب اللہ تعالیٰ کا یقین, اس کی عظمت, اس کی بڑائی دلوں کے اندر آئے گی نا, تو اللہ تعالیٰ کی ہر بات ماننا آسان ہو جائے گی. اللہ کی جتنی بڑائی دل میں آئے گی, اتنی اللہ کی ہر بات ماننا کیا ہو جائے گا, بولو, آسان ہو جائے گا. ہاں کیونکہ آدمی ہمیشہ جس کی دل میں عظمت, محبت, بڑائی ہوتی ہے نا, قدر ہوتی ہے, اس کی بات کو مانتا ہے. اپنے باپ کی قدر دل میں ہے, محبت ہے, تو اس کا باپ اس کو چھوٹے بڑے کام کے لیے اس کو دھکے کھلواتا ہے تو یہ مانتا ہے. اور محلے میں اسی کے باپ کا عمر کا کوئی آدمی اس کو کہے کہ یہ کر لے وہ کر لے, مانے گا نہیں مانے گا, کہ جو محبت باپ کی ہے وہ دوسرے کی محلے میں نہیں ہو سکتی ہے, بھلے باپ کی اس عمر سے بڑا کیوں نہیں ہے. ایک آدھ مرتبہ آدمی کیا ہے مروت میں کر لے گا, پھر ہاں چاچا سے کہے گا چاچا بہت کام ہے ابھی نہیں, لیکن اپنے باپ کی بات. یہ انسان کی فطرت ہے. جب دلوں میں میرے بھائیوں اس دعوت کی مبارک محنت کے راستے سے نکلنا ہوگا اور جان مال کی قربانیاں دینا ہوگی اور جماعتوں میں نکل کر اللہ کی عظمت کو, اللہ کی بڑائی کو, اللہ کی کبریائی کو میں آپ بولیں گے, تو اللہ کی عظمت, اللہ کی بڑائی, اللہ کی کبریائی اور میرے دوست بھائیوں اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی, دل اللہ کی عظمت سے بھر جائے گا, اللہ کی بڑائی سے بھر جائے گا, تو پھر اللہ کی حد بھر بات ماننا کیا ہو جائے گا, بولو, آسان ہو جائے گا. وہ نماز کو کہے بندہ نماز پڑھے گا, کیوں, اللہ کا حکم ہے. کس کا حکم ہے بولو, مسجد کے مولانا صاحب کی بات نہیں ہے, امام صاحب کی بات نہیں ہے, جماعت والوں کی بات ہے, نماز پڑھو ایسا کہتے ہیں کیوں بھائی, یہ تو اللہ کا حکم ہے. کس کا حکم ہے, ہاں امام صاحب نہ کہیں, مولانا صاحب نہ کہیں, جماعت والے نہ کہیں, امیر صاحب نہ کہیں, تو میرے دوستو بھائیوں چھوڑ دیں گے, نہیں نہیں کوئی نہ کہے, ہم کو تو پہلے سے اللہ نے کہا ہے, اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم کو بتایا کہ پانچ وقت کی نماز اسلام میں فرض ہیں. جو پانچ وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اس پر آسان کر دے گا, برکت والی اللہ اس کے لیے دنیا بنا دے گا, اس کی آخرت کو اللہ تعالیٰ سنوار دے گا, خدا عزت کا مقام اسے دے گا. کیوں کر رہا ہے بولو, اللہ کی عظمت ہے, اللہ کی بڑائی ہے. کتنا بھی تھکا ہوگا, رات کو دو بجے تھک کر آ کر سویا ہے نا, اور چھ بجے مسجد میں اذان ہو گئی, تو آدمی اپنی پوری تھکاوٹ کے باوجود کیا کرے گا, اللہ کی دل میں عظمت ہے تو اللہ کے حکم کی بھی عظمت ہوگی, آدمی اٹھ جائے گا, اٹھ کر وضو کر کے مسجد میں جا کے نماز پڑھ کے پھر اپنی باقی کی نیند پوری کر لے گا, لیکن اپنی تھکان کی وجہ سے نیند نہیں چھوڑے, نماز کو نہیں چھوڑے گا. اللہ کی عظمت, اللہ کی بڑائی, کہ نماز کو حکم ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا, کتنا بھی مشغول ہوگا آدمی کیا کرے گا, اپنی مشغولیت کے باوجود جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا. بھائی دکان پر سیزن ہے, اذان ہو گئی, ٹھیک ہے بھائی بند کرو اس کو, چلو مسجد کے اندر چلو. مسلمانوں کے بازار ایسے ہوتے ہیں, مسلمان کی دکان ایسی ہوتی ہے کہ نماز کے پر اس کا شٹر گر جاتا ہے, اس کی لاری پر کپڑا ڈال دیتا ہے. رکشہ والا مسلمان ہے نا, وہ اپنی گھڑی پر نظر رکھے گا, نماز کے ٹائم پر اس کو وردی پیسنجر ملیں گے نا تو وہ معذرت کر دے گا, نہیں ہمارا نماز نو ٹائم چاہیے, اندر بیس منٹ پچی ہم, دور کا بھاڑا ملے گا تو بھی کیا کہتے, نہیں ہمارا نہیں, پہلے ہی نماز جب ستے نماز پڑھو. ایک نماز کا ثواب 27 گنا ہے, हाँ, जमात के साथ नमाज पढ़ना ये ईमान की निशानी है। हाँ, कि जमात की नमाज को अल्लाह ताला पसंद करता है। नमाज तो अगली उम्मतों को भी दी गई थी, नमाजें अगली उम्मतों को भी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को, दाऊद सुलेमान यहया ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्मतों को भी दी गई, इस उम्मत को भी दी गई नमाज। लेकिन इस उम्मत को नमाज दी गई है जमात के साथ दी गई है। अगली उम्मतों में जमात नहीं थी, अगली उम्मतों में नमाज थी लेकिन बोलो जमात नहीं थी। अकेले अकेले पढ़ लें, घर में पढ़ लें, मस्जिद में पढ़ लें, अकेले पढ़ लें। इस उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने जमात की नमाज को मशरू किया है। हाँ, हमें जमात के साथ, और इसका अजर बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? पढ़ोगे एक और एक का मिलेगा कितना बोलो? दो भी नहीं, तीन भी नहीं, पांच भी नहीं, डबल तो सब देते हैं, बोलते हैं ना एक का डबल, फिर लेके भाग जाते हैं लेके क्या हो जाते हैं? रफू चक्कर हो जाते हैं, ढूंढते रहो एक के डबल करने वाले, सब परेशान हो जाते हैं। अल्लाह मियां ऐसा नहीं करता है। मोमिन एक नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह ताला इसका 27 गुना अजर और सवाब इसके खाते में जमा कर लेगा। ये कम से कम की बात है। और ये हमारे यहां बहुत बड़ा तबका किसान का है। हजरत शेख ने फजाइल में लिखा है कि किसान लोग खेतों के अंदर अपनी नमाज को खेतों में जमात के साथ पढ़े तो उन्हें तो 50 गुना अजर मिलेगा। इन्हें क्या मिलेगा बोलो? 50 गुना। कि खेत से मस्जिद दूर है, इधर भी अपना भाई है, इधर भी अपना भाई है, इधर भी इतना भाई है, ये सब मिलकर तय कर ले कि भाई जोर की नमाज अपने को 1:30 बजे पढ़नी है, तुम यहां झाड़ के नीचे आ जाइए। सब सबके पास कपड़ा होता है, यही अजान दे देंगे। पानी की तो सहूलत हर जगह खेत की होती है। ये 3, 4, 5, 7 जने जमात के साथ जोहर पढ़ ले, जमात के साथ असर पढ़ ले, बोलो कितना बड़ा अजर है, कितना बड़ा अजर है इनको। अल्लाह का हुक्म है ये। मोमिन नमाज नहीं छोड़ता है, इसकी पहचान नमाज है। हमारे एक दोस्त है, इन्होंने कारगुजारी हमको सुनाई। वो कहने लगे, मैं एक मरतबा साउथ अफ्रीका से जर्मनी हवाई जहाज से जा रहा था, मैं जोहान्सबर्ग से बैठ गया। हवाई जहाज चलने लगा हवा में, एक आध घंटे के बाद अंदर की कॉकपिट से पायलट के यूनिफॉर्म में का दिया। वो पायलट था, मेन पायलट था हवाई जहाज का, वो अपने यूनिफॉर्म में था, माशाल्लाह चेहरे पर सुन्नत रसूल थी। और उसने वो अपने हवाई जहाज का जो स्टाफ होता है इनके पास से पैसेंजरों की लिस्ट ली, और लिस्ट के एतबार से इसमें देखा कौन कौन मुसलमान है, और इसमें सब में सीट नंबर लिखे होते हैं, जैसे रेलवे में होता है ना, इसमें भी होते। तो उसने सीट नंबर के एतबार से उन सीटों पर जो जो मुसलमान थे इनको जाकर अंग्रेजी में कहा, प्लीज सलात, प्लीज सलात, प्लीज सलात, प्लीज प्लीज सलात, सलात नमाज पढ़ेंगे। तो हमारा साथी कहने लगे कि मैं तो शक्ल सूरत से जाना पहचाना था माशाल्लाह। उसने मुझे भी कहा, तो मैं भी नमाज के लिए फिक्र में था कि अल्लाह करे नमाज की कोई शक्ल बन जाए। अब इसी ने दावत दी तो मैं सीट पर सो के वहां उसकी कॉकपिट और गेट के पास थोड़ी सी जगह था, वहां पहुंच गए। इसमें 3-4 जने जमा हो गए, और जमा होने के बाद उसने खुद ने पायलट ने अजान दी और उसने खुद ने इमामत की। हमने जोहर की नमाज कसर पढ़ी, कसर पढ़ने के बाद इसके हाथ में एक बैग थी, उसमें से इसने इंग्लिश में से फजाइल आमाल निकाले, और फजाइल आमाल निकालकर इसने 2-4 मिनट इसमें से एक हदीस पढ़ के तालीम करके इसने कह दिया कि देखो हमारी अगली नमाज का वक्त इतने बजे होगा हवाई जहाज में, आप हजरात तैयार रहे और यहीं पर आ जाए, हम असर पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? असर पढ़ेंगे। मैं ये बता रहा हूं, मुसलमान कहां भी हो अपनी नमाज नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये इसका आई कार्ड है। हमारा आई कार्ड आधार कार्ड नहीं है, समझे ना? हमारी पहचान क्या है बोलो? नमाज है। मुसलमान की जिंदगी में नमाज होगी, नमाज के बगैर इसकी पहचान अधूरी है। चाहे शादी में जाएगा तो भी नमाज पढ़ेगा, बारात में जाएगा तो भी नमाज पढ़ेगा, मौत मैयत में जाएगा तो भी नमाज पढ़ेगा। हाँ, अच्छा भला चंगा तंदुरुस्त है तो भी पढ़ेगा, बीमार सीमार है तो बीमार भी नमाज पढ़ेगा, इतना बीमार है कि भाई खड़ा होकर पढ़ने की हिम्मत नहीं है तो बैठकर पढ़ेगा, क्योंकि हमारी शरीयत ने इसको इजाजत दी है, माफ नहीं किया है। कि तुम बीमार जाओ तुमको माफ, ऐसा माफ नहीं है कि बैठकर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ो, इशारे से पढ़ो लेकिन पढ़ो। नियत करो इंशाल्लाह पांच वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ ये नहीं है कि मेरे भाइयों जहां माहौल मिला तो ठीक है और घर पर चले गए तो फजर ईशा गाई। फजर और ईशा का खास एहतमाम। दरअसल मगरिब तो आदमी दिन में चलते फिरते जीते जागते बाजार में खेत में मस्जिदों में पढ़ लेता है, मसला आता है फजर का हर जगह। किसी भी मस्जिद के पक्के नमाजी पहचान लो ना तो फजर में उनके नमाजी देख लो। ये हमारी मस्जिद और जमात के जरिए कहते हैं घर घर की मुलाकात करो, क्यों करो? ताकि हमारे मस्जिद के अंदर 100% लोग नमाज पढ़े। भाई मोहल्ले में मकान 200 है, मोहल्लों में मकान 150 है, बालिक मरद तो माशाल्लाह 250-300 मरद है और मस्जिद की सब देखो तो 150 है। एक सब में 25 आदमी, पीछे 12-15 आदमी, 40-45 आदमी नमाजी हमारे। भाई ये 250 आदमी नमाज नहीं पढ़ते क्या? इनको मालूम नहीं है अजान खाली ये 45 आदमी के लिए थी? बोलो मस्जिद की अजान ये 40-50 आदमी के लिए? ये जितना मजमा कौन फिक्र करेगा इसकी? मस्जिद और जमात फिक्र करेगी, घर घर जाकर मुलाकातें करेगी। तो आदमी अपनी अपनी नमाज कहीं भी हो पढ़े, फजर का खास तौर के अहतमाम, फजर नहीं छोड़ेगा आदमी, कितना भी थका हो फजर छोड़े नहीं। सर्दियों में तो लंबी रात होती है, गर्मियों में बहुत छोटी रातें होती हैं, और गर्मियों में नजारा भी ऐसा होता है कि रात जूं जूं ठंडी होती है ना सुबह के करीब तो आदमी की नींद भी गहरी हो जाती है, और शैतान भी कहता है कि सो जा लंबी रात है। हदीसों में इसकी बोची पर आकर मंत्र पढ़ता, क्या पढ़ता बोलो? हाँ जैसे छोटे बच्चों को माँ थपकिया देकर सुला देती है, थपकिया दे देकर बच्चा सो जाता है, शैतान थपकिया देता है मंत्र पढ़ता है सो जा। तो ये तो पहले से चाहता था और इंग्लिश ने आकर इसको थपकिया दे दिए तो और सो जाएगा, है नहीं? गर्मियों की छोटी रातों में मुसलमान अपनी फजर कभी कजा नहीं होने देता, वो अलार्म रख के सोएगा, घर वालों को क्या के सोएगा, अड़ोस पड़ोस में जो पाबंद है उससे कहेगा मेरे दरवाजे की कुंडी खिटखिटाते जाइयो, जरा कॉल बिल बजाते जाइयो, मुझे जगाते जाइयो, मेरी फजर बजाऊंगा। क्यों? जो आदमी फजर की नमाज पढ़ के कारोबार में चलता है, खेती में चलता है, रिक्शा लारी फेरी और अपनी टेम्पी लेकर चलता है, अल्लाह इसके हर काम में खैर बरकत देता है, इसके हर काम में खैर बरकत। क्यों? ये फजर का नमाजी है, और जिसने फजर पढ़ी है अल्लाह ने इसमें वो इस्तेदाद भी पैदा कर ली है, ये आज की जोहर भी पढ़ेगा, असर मगरिब ईशा सारी नमाजें पढ़ेगा। ये फजर इसके लिए कठिन थी, जो कठिन थी वो उसके लिए आसान हो गई, तो जो आसान है वो तो पहले से आसान है, उसे कैसे छोड़ेगा वो? फजर की नमाजी अपने घर से निकलता है दुकान की चाबियां लेकर, अल्लाह इसके हाथों में खैर बरकत डाल देता है, इसकी रोजी इज्जत के साथ होती है, इसकी रोजी बरकत के साथ होती है, इसकी रोजी मेरे भाइयों हाँ अल्लाह की तरफ से फरिश्तों इसके मुआविन और मददगार बन जाते हैं, आसान कर दिया जाता है रोजी का मामला, इसको परेशान नहीं किया जाता, क्योंकि ये फजर का नमाजी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में यह जुमला है, अल्लाहुम्मा बारिक लि उम्मती फी बुकूरिहा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा फरमाते थे, ए अल्लाह तू मेरी उम्मत की सुबहों में बरकत अता फरमा। हमारी मेरी उम्मत में की सुबहों में क्या अता फरमा? तो ये दुआ खाली मदीने वालों के लिए नहीं थी, खाली अरबस्तान वालों के लिए, सऊदिया वालों के लिए नहीं थी, यह हर उम्मत के लिए है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। हाँ सुनते हो भाइयों, समझते हो? हाँ ये नंदासण वालों के लिए भी है और सरखे छतराल वालों के लिए भी है। हाँ ये विरमगाम सुरेंद्र नगर धागंदरा और बजाना दसाड़ा सब लोगों के लिए है, अल्लाह के नबी की दुआ सबके लिए है। लेकिन बरकत कौन देखेगा? बरकत वो देखेगा सुबह जो उठेगा। बरकत कौन देखेगा बोलो? जो सुबह उठेगा। सुबह उठे और फजर के नमाज की घरों के अंदर अपनी जात से पाबंद बने, अपने घरों में इसका माहौल बनावे। अपने घरों में क्या होगा बोलो, इसका माहौल घरों में रात देर तक जागने की सिस्टम है खत्म कर दे कि रात 12 बजे तक, 1:30 बजे तक, 1 बजे तक घरों के अंदर महफिलें लग रही हैं। हमारे जवानी बाहर चौराहों पर, पान के गल्लों पर, चाय की किटलियों पर और ठंडे गर्म की दुकानों पर, चार रस्तों पर, सोसाइटी के नाकों पर और फलियों के अंदर इनकी 12 बजे तक, 1 बजे तक महफिलें लगी रहती हैं। अब जो 1 बजे 2 बजे रात को सोएगा वो कैसे फजर में उठेगा? इसलिए फजर के नमाजी जिन्हें चुने लोग होते हैं, हालांकि फजर सब जानते हैं, पूरा मोहल्ले के लिए जानती, पूरा मोहल्ला जानता है कि फजर पढ़नी चाहिए। अच्छा, घर का मैं मेन आदमी हूं, घर का वडील मैं हूं, मैं फजर में सो जाऊंगा तो मेरे बच्चे उठेंगे? अरे बताओ, मेरी बीवी उठेगी, मेरी जवान औलाद उठेगी, मेरी जवान बच्चियां घर में फजर के लिए उठेगी? अच्छा, मेरे बेटे नहीं उठे तो इनकी बहुएं कहां से उठेगी? पूरा घर फजर के बगैर पड़ा रहा है, शैतान ने अपना तंबू वहां ताड़ दिया है। शैतान का तंबू है, डेरा इस घर में है, इस घर में बेबरकतियां होगी। अब क्या होगा जानते हो? बेबरकती, बेबरकती का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे गांव में से चावल की बोरियां गायब हो जाएगी, जिन की बोरियां गायब हो जाएगी, तेल के डब्बे उड़ जाएंगे, घर की गोदड़ियां उड़ जाएगी, ऐसा होगा नहीं। बाप बेटे में लड़ाई होगी, हाँ घर में बाप की एंट्री होगी तो बेटा निकल जाएगा, और बेटे की एंट्री होगी तो बाप साइड पर हो जाएगा। देखो ये बता रहा हूं, घर घर की स्टोरी है ये। ये भी बरकतियां हैं जिंदगियों में, घरों में सुकून खत्म है। हालांकि सुकून के लिए सारी चीजें लाके जमा करके रखी है, लेकिन ये नादान जहां सुकून समझता है जिन चीजों में, उसमें सुकून नहीं है। ये समझता है पंखों में, फिर समझता है कूलर में, ये समझता है एसी में, ये समझता है शोकेस की अच्छी अच्छी चीजों में, ये समझता है कीमती सोफा केस लाने में और सोफा सेट बनाने में, कालीन बिछाने में, अच्छे खाने, अच्छे पीने, अच्छे लिबास, बेहतरीन बाहर गाड़ियां रखती है, हर एक के पास जानदार शानदार टू व्हीलर है, हाँ। और कहता है सुकून, अरे सुकून नहीं है घर में, हाँ घर घर में लड़ाई है, बाप बेटी की लड़ाई है, सास बहू की लड़ाई है, हाँ ननंद भाभी की लड़ाइयां हैं, जेठानी देराणी की लड़ाइयां हैं, नहीं बनती है घरों में। ये बेबरकती है किसकी? चीजों की कमी की नहीं है, पैसों की कमी की नहीं है, ये बेबरकती है घरों में आमाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न लाने की है। हाँ, कि घर में एक भी फजर के लिए नहीं उठ रहा है, बाप भी सोया है, जवान बेटे सोए हैं, जवान बहुएं सोई हुई, बेटियां सोई हुई है। वो घराना बहुत मुबारक है जिस घर का वडील बाप उठे, खुद उठे, बच्चों को उठावे, बेटियों को उठावे, बहुओं को उठावे, इनकी मां को उठावे, हला उठो बता, उठो फजर पढ़ो बता, ऐसा करोगे? ऐसा कौन कौन करेगा ऐसा? हाँ, हमारे घर की पहचान यह है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ऐसी मेहनत थी, ऐसी मेहनत थी कि तहज्जुद की नमाज के मौके पर कोई आदमी मदीना तैयबा की गलियों से गुजर जाता, उसे घर घर के अंदर कुरान की तिलावत की आवाज सुनाई देती। ये मेहनत थी और ये बात चाही जाती है। ऐसे घरों में अल्लाह ताला खैर बरकत देता है, चाहे इस घर का आदमी रोज कमावे रोज खावे, लेकिन इसकी जिंदगी कैसे होगी? एकदम सुकून के साथ, चैन के साथ होगी। हाँ, इसके घर के अंदर असबाब कम है तो भी सुकून से सोएगा, और बंगला है ना तो बंगले में भी सुकून से सोएगा। आदमी का सुकून चैन है ना, वो छोटे और बड़े घरों के अंदर झोंपड़े और बंगलों से ताल्लुक नहीं है, पैसों की किल्लत कसरत से ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक नमाज और अमाल के साथ है। इसलिए हमें खुद को नमाजी बनना है। अपने घरों में मेरे भाइयों मेहनत करके एक एक आदमी नमाज भी बने, घर का एक एक आदमी, बच्चे तक नमाज के लिए उठे। हदीसों में ना, बच्चों को 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म दो, 10 साल की उम्र में इनकी नमाज के छूटने पर इनकी तंबीह करो। ये क्यों है? ताकि आदि बने, अभी से इनमें हैबिट आ जाए नमाज को। हालांकि 10 साल का बच्चा क्या समझ रखेगा, नादान है, अभी इतनी अकल नहीं है, लेकिन ये मस्जिद आते जाते हो जाएगा तो जब सूझबूझ पैदा हो जाएगी तो ये माशाल्लाह क्या बन जाएगा, नमाज का पक्का पाबंद बन जाएगा। نمازوں کا ماحول گھروں میں بنے, ہمارے اطراف کے اندر بنے, سوسائٹیوں میں, محلوں میں نمازوں کا ماحول بنے. محنت کریں آس پاس کے اندر سب جگہ پر نماز کا ماحول بنے, اور محنت کریں 100% ہمارے محلے کے لوگ کیا بنے, بولو, نمازی بن جائیں. محنت کر دیجیے. مسلمانوں کی ساری اجتماعی پریشانیاں اجتماعی غفلت کی وجہ سے ہیں. اللہ کے حکم میں سب سے بڑا حکم نماز ہے. حضرت مایوس رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو جس دن محنت کر کے مسلمانوں میں 50% لوگوں کو نمازی بنا دوں گے, کہ گاؤں میں 100 گھر ہیں اور 50 گھر پکے بن گئے, اس دن سے اللہ تعالیٰ باطل کی عروج پر بریک کر دے گا, باطل کی ترقی پر, اس کی پرگتی پر اللہ کیا لگا دے گا, بریک مار دے گا, اور حق جو نیچے جا رہا ہے زوال کی طرف, اللہ اس کے نیچے جانے پر بھی بریک کا لگا دے گا. اور جس دن امت میں محنت کر کے 50% سے زیادہ نمازی بن گئے, 51, 52, 53, اور جو بڑھنا شروع ہوگا, ایسے اللہ تعالیٰ حق کو, اہل حق کو اللہ پروان چڑھائے گا, ترقی دے گا, پرگتی دے گا, عزت سر بلندی دے گا. ہاں, اور باطل اس کا پارا نیچے آنا شروع ہو جائے گا, یہ نیچے آئے گا, مسئلہ حل ہوتا ہے کلمہ نماز سے. کہ اللہ کا یقین بناؤ, زندگیوں میں نماز اور اعمال کی پابندی کرو. نماز تو روز فرض ہے 5 وقت کی. ہاں, روزہ, حج, زکات, یہ تو سال کا اور زندگی کا مسئلہ ہے. کہ روزہ سال میں ایک مرتبہ, زکات سال میں ایک دفعہ, حج زندگی میں ایک مرتبہ. لیکن محنت اپنے پر, محنت اپنے بھائیوں پر, محنت اپنے محلوں پر, اور چل پھر کر علاقوں میں چلو, صوبوں کے اندر جاؤ, 4-4 مہینے کی جماعتوں میں. کہاں جاؤ بولو, 4-4 مہینے کی جماعتوں میں چلو پھرو, اور وہاں ماحول بناؤ کہ لوگ نمازوں کے پابند بنے, اعمال کے پابند بنے, غفلت سے نکلیں. ہماری زندگیاں غفلت والی ہیں, مسلمان کی زندگی غفلت والی ہے. کیا کرنا کہ ان کی یاد دہانی ہے, فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, کہ آپ یاد دہانی کراتے رہیے, کہ یاد دہانی کرانا یہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. علاقوں میں چلے پھرے, محنت کرے. تو جاؤں گے سب انشاءاللہ 4-4 مہینے کے لیے. کون کون جائے گا اس میں سے؟ ہاں, 4-4 مہینے جانا ہے, اور چلو علاقوں میں, صوبوں میں, کبھی جنوب میں, کبھی شمال میں, جہاں مشورے سے بھیجیں, وہاں چل پھر کر محنت کرو. جتنی آدمی محنت دوسروں پر کرے گا نا, اتنا اپنے اندر سے کیا بنے گا, بولو, پکا بنے گا. ہم کچے کیوں ہیں؟ دوسروں پر محنت نہیں کرتے ہیں, دوسروں پر. اور رات کا چوکیدار, میں ایک مرتبہ یو پی میں امروہہ میں تھا, اپنے ایک رشتے دار کے مکان میں سو رہا تھا. ایسا ہی دسمبر کا مہینہ, اور وہاں دسمبر کے مہینے میں خوب جاڑا, خوب سردی ہوتی ہے. تو رات کو 2 بجے محلے کے باہر سڑک پر ایک آدمی ڈنڈا ٹھوک رہا ہے, ٹھا ٹھا, اور منہ میں پڑ رہا ہے, جاگتے رہو, جاگتے رہو. تو میں سردی بہت تھا اندر, لحاف کے اندر, رجائی کے اندر سوچتا رہا, یار یہ کیا مصیبت ہے, جاگتے رہو, جاگتے رہو. کیونکہ میری زندگی میں مجھے پہلا انوبھو تھا وہ. صبح میں فجر پڑھنے گیا مسجد میں, تو میں نے امام صاحب سے پوچھا کہ امام صاحب, یہ رات میں ایک آدمی وہ ٹھوک رہا تھا, جاگتے رہو, منہ میں پاڑ رہا تھا. تو کہنے لگے, وہ یہاں کا چوکیدار ہے. تو میں نے کہا, چوکیدار ہے تو جاگتے رہو, جاگتے رہو, کس کو کہہ رہا تھا؟ ارے, کہ وہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ اس کو خود کو نیند نہ آ جائے. بس ہمیں دوسروں کو کہنا کس کے لیے, بولو, ہم خود کرنے والے بن جائیں, ہم غفلت میں نہ پڑے. 4-4 مہینوں میں نکل کر گشتوں میں, مسلمانوں کے مختلف طبقوں میں ایمان اعمال کی محنت ہو, تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو ایمان عمل کے اعتبار سے, ایمان اور نیکی اور بھلائی کے اعتبار سے کیا کر دے, بولو, پکا کر دے. اور ہماری محنت سے اللہ اس علاقے میں جتنی خیر وجود کے اندر لائے گا, اللہ ساری کی ساری خیر کس کے کھاتے میں لکھ دے گا؟ جماعت کے کھاتے میں لکھ دے گا. ये 12 आदमी की जमान नंदारसण से गई, सरखेज से गई, विरमगाम से गई, सुरेंद्र नगर से गई थी। इसने मेहनत की माशाल्लाह 4 महीने में, हाँ, और 4 महीने में रहकर जमात ने मेहनत की इलाकों में तो माशाल्लाह सैकड़ों को मस्जिद में आता कर दिया। इतने जवानों ने गफलत से तोबा कर ली, माहौल के अंदर निखार पैदा हो गया। माहौल में क्या पैदा हो गया? नेकी पैदा हो गई, गफलत दूर हो गई। हाँ, लोग सोए हुए थे, जाग गए, पाबंद बनने लगे। मोहल्लों में दीन के एतबार से, गांव सदस्यों में अल्लाह के दीन की एतबार से, खुदा के दीन की मेहनत के एतबार से एक अच्छी खासी नकलो हरकत शुरू हो गई। गज जिंदा हो गए, तालीम जिंदा हो गई, नमाज जिंदा हो गई, घरों में तिलावत और जिक्र जिंदा हो गई। लोग भी 3 दिन और चिल्ले के जरिए से अपने इलाकों में मेहनत करने वाले हो गए, और उन्होंने भी माशाल्लाह जमात की बरकत से अपने इलाके में नकलो हरकत शुरू कर दी। तो ये सब किसके खाते में जाएगा, बोलो किसके खाते में जाएगा? अरे बोलो ने, अरे ये जमात के खाते में जाएगा। अद्दालु अलल खैर कफाइलिही, भलाई की तरफ जो आदमी दूसरों की रहबरी करता है, इसको अल्लाह ताला उस भलाई करने वालों की तरह अजर व सवाब देता है। हज़रत अली सफदुन ने फरमाया, अली अल्लाह तेरी वजह से किसी को हिदायत दे दे, तेरे लिए सुर्ख ऊंटों से ये बेहतर है। हाँ, सुर्ख ऊंट है ने, ये अरब का बहुत कीमती माल, अरब का बहुत कीमती माल। आज भी तकरीबन 25 लाख से कम में एक ऊंटनी मिलता है। वो ऐसे कई ऊंट हमारे पास आ जावे, लेकिन किसी को हमारे 2 बोल से 10-15 मिनट समझाने से अल्लाह हिदायत दे दे, तोबा की तौफीक दे दे, जिंदगी पलट जावे, ये हमारे लिए दुनिया के इन मालो मता से बहुत ज्यादा कीमती चीज है। लगेंगे 4 महीने, और 4 महीनों में हमारा फायदा है। ये भाई सो रहे, इनको उठा दो, कब से सो रहे हैं भाई? चौथे आसमान पर हो, वहां तो ईसा अलैहि सलाम है, मिल जाए तो सलाम अर्ज कर दे रहा। ये अजीब है। हज़रत अली फरमाते थे कि 6 चीजें शैतान की तरफ से। लोग कहते हैं बयान होता है तो नींद आती है, रहमत उतरती है, रहमत नहीं उतरती है, समझते हो? खामखाती बात में हज़रत अली फरमाते 6 चीजें शैतान की तरफ से। इसमें एक बात हज़रत अली फरमाते थे, अन्नौम इंद ज़िक्र, हाँ अल्लाह के दीन की कोई बात हो रही है ना, उस मौके पर नींद का आना ये शैतान की तरफ से। वो पहले तो इस्तेमा में आने ही नहीं देता है, और बहुत साथियों ने कह दिया तैयार होकर आ गए तो यहाँ आके शैतान क्या कहता है, सो जा। यहाँ के सुला देता है। तुम ये मत समझियो तुम 2-5 हजार आए हो तो तुम 2-5 हजार नहीं, तुम में से हरेक के साथ, मेरे साथ, सबके साथ अपना शैतान है। हम 5 हजार है ना, तो 5 हजार कालिया यहां बैठे हैं। अभी तश्किल का मौका आएगा ना 4 महीने का, समझ रहे, तो हरेक का कालिया इसको समझाएगा, तेरी दुकान है, तेरा खेत है, तेरी नौकरी है, तेरी रिक्शा है, तेरे छोकरे, ये कालिया समझाएगा। समझे ने? हाँ, तुम 5 हजार हो तो 5 हजार साथ में बैठे, याद बैठे, तुमको नहीं दिखाई देंगे। जैसे फरिश्ते होते हैं ना दीन की मजलिसों में, जिक्र की मजलिसों में, वो हमको दिखाई नहीं देते, वो आसमान तक होते हैं। हाँ, ये तश्किल के मौके पर ये सुझ जाते हैं, यूं यूं यूं, जरा इरादा अंदर से पैदा होगा तो कालिया कहेगा अरे क्या करता है, क्या करता है, दुकान का क्या होगा, खत्म हो गई बात। ऐसा करने दोगे तुम नहीं? आज तो इंशाल्लाह कालियों को हरा दे रहा है, क्या करते हो इंशाल्लाह? ये सारा मजमा तय कर दे कि इंशाल्लाह अपने को 4-4 महीने यहां से जाने का है। कौन कौन तय करता है? माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे भाइयों, जमातों में निकलो, हाँ, इससे अल्लाह अपने अंदर मजबूती पैदा करेगा, और इलाकों में मेहनत करोगे अल्लाह इसका नेकी अजर देगा। मैं आपको कारगुजारी सुनाकर बात खत्म करता हूं, मैं पानी पिला दूं। हमारे यहां से एक जमात थी, आज से तकरीबन 7-8 साल पहले की बात है, रमजान में 15 रमजान को निकली। मैं एक जगह चिल्ले में था, मैं आया, मेरी मस्जिद की जमात थी। सुबह में 1:30 बजे, रमजान का महीना था, 1:30 बजे मैं घर पर आया। रात को जमात झारखंड जाने वाली थी, असर की नमाज के बाद जमात के 15 साथी जमा हो गए, और इनकी इफ्तारी मस्जिद में थी। जमात ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली, जमात का जिम्मेदार तय हो गया, मैंने देखा सब खाते पीते घर के अच्छे छोकरे हैं, सब यंग, इनमें शायद कोई सफेद बाल वाला हो। तो इन्होंने मुझसे कहा क्या करेंगे हम लोग वहां जा रहे हैं। मैंने कहा देखो एक काम करियो, तुम ईद तक तो वहां शहर में रुक जाइए, ईद के बाद तुम देहातों का रास्ता पकड़ लेना। कहां चले जाना? देहातों में, वो मुसलमानों के इलाकों में अच्छे देहात है, देहातों में घुसकर मेहनत करना। शहरों में क्या होता है, लोग मशगूल बहुत होते हैं, और तुम देहातों में जाओगे तो लोगों के पास फुर्सत भी होगी और तुम्हारी जमात जवानों की जमात है, मेहनत करने वाली जमात है। तो देहातों में नकद जमातें बनाई, तुम्हारे दो दो साथी जोड़कर इनको भेजो तीन तीन दिन के लिए, ताकि तुम्हारे जमात साथियों को भी जमात चलाने की मशक हो और उस इलाके का भी माशाल्लाह नकलो हरकत से खूब काम वजूद में आएगा। चले गए। डेढ़ दो महीने के बाद उस इलाके से एक जमात चिल्ले की हमारे यहां आई। इतवार के दिन वो जमात मेरी मस्जिद में आई। जोहर की नमाज के बाद मस्जिद के सहन में लेटा हुआ तो मुझे एकदम अल्लाह ने ख्याल में बात डाली, यार ये जमात उसी इलाके से आई जहां मेरी मस्जिद की जमात काम कर रही है। तो मैंने उस जमात के अमीर साहब को, इनका नाम नासिर भाई था, मैंने बोला इधर आओ नासिर भाई, क्या हाल है तुम्हारा, खैरियत? हम कहा हमारी जमात क्या कर रही है, कैसा काम कर रही है? तकरीबन दो महीने से ऊपर का वक्त गुजर चुका है। तो उन्होंने अपनी जबान में कहा कि क्या बताऊं अमीर साहब आपको, बोले जमात हमारे यहां देहातों में है, इलाकों में एक बस्ती में तीन दिन चार दिन रुकती है, काम करती है, मेहनत करती है, मुलाकातें करती है, अपने जैसे जवान छोकरों से दोस्ती कर लेती है और सबकी तश्कील कर करके तीन दिन की जमात बनाकर ये लोग अतराफ में भेजते हैं, और एक मस्जिद से एक दिन में, दो दिन में, तीन दिन में तीन जमातें, चार जमातें बना देते हैं। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा इससे तुम्हारे माहौल में क्या फर्क तुमको दिखा? बोले बात कहूं, अभी भी रमजान बोले खत्म हुआ है। बात तुम्हारा, बोले जितने नमाजी रमजान में होते थे ना, जमात मेहनत करती है ना, तो इतने ही नमाजी इस वक्त बगैर रमजान के हैं हमारी मस्जिद में। फजर की नमाजी छत पर हो जाते हैं, अंदर भर जाती है, ऊपर चले जाते हैं, कि रमजान में ऐसा होता था फजर में। फिर मैंने और क्या हुआ कि हमारे गांव के लड़के जो है ये मोबाइल के अंदर गीत संगीत म्यूजिक गाने सुनते हुए जाते हैं, जो तीन दिन लगा कर आता है सर पे टोपी रख लेता है और अपने गाने के मोबाइल के अंदर से गाने वाने सब डिलीट करके मोहम्मद तारिक जमील साहब के बयानात हैं, जुनेद जमशेद की नाते हैं, नज्में हैं, ये सब चीजें वो लोग सुनते सुनाते गलियों से गुजरते हैं। अच्छा, मैंने कहा और क्या हुआ? बोले हमारे कैसी सिस्टम है कि तीन चार देहात के बीच में एक पंचायत होती है, तीन चार देहातों के बीच में एक ग्राम पंचायत, एक सरपंच। सरपंच का काम इसका हफ्ते का हर जगह का एक एक दिन तय होता है, आज के भी पीर के दिन यहाँ, मंगल यहाँ, बुध यहाँ, जुमेरात यहाँ। गांव में 24 घंटे सुबह से शाम तक रुकता है, गांव के जो मसले होते हैं, कोई झगड़ा झुगड़ी लड़ाई सुलह संबंध जो होती है समाधान करने की बातें वो कर लेता है। बोले हमारे ये सरपंच लोग बातें करते हैं, क्या हो गया, कोई झगड़ा ही नहीं हो रहा है गांव में, क्या हो गया गांव में, कोई झगड़ा ही नहीं, सुबह से शाम तक ऑफिस में बैठा रहता हूं, कोई बात लेकर आता ही नहीं है, शांति है गांव के अंदर। अच्छा, मैंने कहा और क्या हो रहा है? बोले एक बात बता, हमारे यहाँ दारू, ये हमारे यहाँ दारू बिकता है, दुकान है, जैसे हमारे यहाँ चाय की लारियां है, हमारे दूसरे सूबों के अंदर खुलेआम बिकता है। तो कहिए दुकान के दारू के जो ठेकेदार हैं ये आपस में बातें करते हैं, एकदम धंधे में मंदी आ गई। तो मंदी आने का क्या मतलब? बोले अमीर साहब 10 रुपये में एक गिलास बेचते हैं, हमारे छोकरे पीते थे, ये जमातों में गए, सबने तौबा की, कहने लगे वो जमात का साथी नासिर, अल्लाह आपकी जमात को जजाय खैर दे, ये सब छोकरे हैं, गांव के भी छोकरे, सब सरके सरके बराबर बराबर, दोस्ती भाईबंदी हो जाती है ना, तीन दिन जाकर आते हैं तो वो लड़के सब जमात के साथ दिन भर तालीम में, अमाल में, नमाज में, गश में, मुलाकात में, और आपकी जमात भी माशा ऐसी दिलदार है, खाना भी सबका पकाती है, और हमारे गांव के छोकरे भी बहुत अच्छे हैं, घर घर से रोटी बनाकर लाते हैं कि भाई सालन तुम पका दो, रोटियां हम घर से लाते हैं, सब मिलकर खाएंगे। तो ये दोस्ती तीन चार दिन जमात के अंदर साथ रहने की बरकत से ये हमारे छोकरे सब दारू से तौबा कर लेते हैं। न कहिए तुमने बहुत बड़ी बात सुनाई। जिस घर का जवान बेटा शराब पी के रात को घर आता हो, उसके माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी, अंदाजा करो। जरा हम में से हर एक आदमी अपने घर के बारे में इसको तस्वूर करे कि मेरा छोकरा दारू पी के रात को घर में आवे तो मुझ पर क्या बीतेगी, इसकी माँ पर क्या बीतेगी, इसकी जवान बीवी पर क्या बीतेगी। और जिस जमात ने वहां पर मेहनत करके उनको जमातों में निकालकर इस गंदे काम से तौबा करवाई, हाँ, और इनको सही डगर पर डाल दिया, तो उस जमात की मेहनत की वजह से उस गांव के कितने माओं के कलेजे की दुआएं इस जमात को मिलेगी। इनकी बीवियों की अंदर की दुआएं जमात को मिलेगी कि जमात का अल्लाह भला करे, इन्होंने इसको सुधार दिया, हाँ, इसको ठिकाने पर ला दिया। तो बोलो दुआएं लेनी है कि नहीं लेनी है, लेकिन कैसे लोगे, घर बैठे रहोगे दुआएं मिल जाएगी, बोलो हैं? सरकेज वाले सरकेज बैठे रहे, विरमगाम वाले विरमगाम में बैठे रहे, सुरेंद्रनगर वाले घर बैठे रहे, हमारी दुकानें भी रहें, ये भी रहें, वो भी रहें, और सबकी दुआएं मिल जाए, ऐसा होता है नहीं। ये तो मेरे दोस्तों भाइयों ऐसा मुतअद्दी अमल है कि आदमी जान माल लेकर चलेगा तो अल्लाह ताला पहले उसको जमाएगा ईमान पर, अमल पर, नेकी पर, भलाई पर। हाँ, मैं बलसाड़ में एक मरतबा काम कर रहा था, गश्त में था, मुलाकात में, गालिबन मगरिब से बाद गश्त में मुलाकातों में था, असल बात उमूमी गश्त हो गया, मगरिब बाद बयान हो गया, गर्मी का जमाना था, ईशा देर से थी उस मस्जिद में। मैंने कहा भाई लोग मिलेंगे, चलो मुलाकातों में। मेरे साथ वहां की मस्जिद के साथी रहबरी में चले, दो तीन साथी। अजान की जब 10 मिनट बाकी थे ना, तो एक साथी मुझसे इजाजत लेकर जाने लगा, मकामी रहबर में से। मैंने भाई खैर तो है, कोई फोन आए घर से जा रहे तू? तो मेरे दूसरे एक साथी ने मकामी ने कहा सब जानो दे इनको, वो मस्जिद ही जाएंगे, कहीं घर नहीं जाएंगे। मैं चलो तुम साथ में मुलाकात करते हुए जाते हैं। खैर अजान हो गई, नमाज हो गई, रात को खाने बैठे, फिर मस्जिद के अंदर बैठे, तो मुझे वो दूसरे साथी ने कहा हमारा ये साथी है ना, इसने पहले चिल्ले में एक बात ठानी थी कि जिंदगी भर नमाज तकबीर उला के साथ पढ़ूंगा। बोले आज ये 18वां साल है, इसकी कोई नमाज तकबीर उला के बगैर नहीं हुई। अभी ठानता अंदर से, हम किताबों में फजाइल अमाल में इसके किस्से सुनते हैं, तालीम में इतने सालों से तकबीर उला पोतनी, इतने साल, ये थोड़ा है कि बड़े बुजुर्गों के साथ है। ये अल्लाह की देन है, जो आदमी अंदर से ठानेगा अल्लाह भी इसको इस नेमत से नवाजेगा। हमारे आज भी ऐसे लोग हैं जिनको मैं अपनी गौर से जानता हूं, को कभी असर से पहले की 4 सुन्नतें गैर मौकदा नहीं छोड़ते, नमाजों के बाद की सुन्नतें गैर मौकदा नवाफिल को नहीं छोड़ते। हाँ, जो आज भी तहज्जुद की नमाज के मौके पर सलातु तस्बीह पढ़ते हैं, रोज तहज्जुद के मौके पर क्या पढ़ते हैं, सलातु तस्बीह पढ़ते हैं। ये कहां सीखे, जमातों में। ये पाबंदियां क्या मिली, 4 महीने में गए, हाँ, अपने आप को अमल पर डाल और अल्लाह से इस्तकामत की दुआएं की कि अल्लाह जमात में तूने आसान कर दिया, घर है, बीवी है, बच्चा है, कारोबार है, खेती बाड़ी है, घर पर तो ढेर सारे जमेले हैं, इनके साथ भी अमल पर लगना जमना आसान कर दे। तो घरों पर आने के बाद भी जमे हुए हैं, काम धंधा भी कर रहे हैं, पाबंदी से नमाज भी पढ़ते, काम धंधा भी कर रहे हैं, पाबंदी से गश्त भी कर रहे हैं, काम धंधा भी कर रहे हैं और पाबंदी से माशाल्लाह अपना जितने जिंदगी के मामूलात बनाए उस पर पाबंद है। रश्क की जिंदगियां हैं, हालांकि बीवी बच्चे वाले लोग हैं, बाल बच्चेदार लोग हैं, काम धंधे वाले हैं, हमको मालूम है इनकी कितनी मशगूलियत होती है, सीजनों में कितने मशगूल होते हैं, लेकिन जो कभी इनको नमाज में जमात के बगैर नहीं देखा, ये पाबंदियां मिलती हैं अल्लाह के रास्ते की नकलो हरकत से। आदमी इरादा करें, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, निकी का इरादा करना चाहिए, लेकिन इरादे के लिए इसके लिए कदम उठाने चाहिए। क्या करना चाहिए बोलो, कदम। 4-4 महीनों में अल्लाह इसकी मश्क की तौफीक देता है। एक आदमी 4 महीना जाएगा, 120 दिन जमात के साथ तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह इसको इसकी मश्क करवाएगा 120 दिन। और अल्लाह के रास्ते की दुआएं बनू इसराइल के नबियों की तरह कबूल होती है कि बनू इसराइल के नबियों की कैसे कबूल हुई, इन्होंने आसमान से दस्तरखान मांगा, पका पकाया लदा लदाया, तो अल्लाह ने इनकी दुआ कबूल करके बोलो पका पकाया लदा लदा दस्तरखान उतारा, जो मांगा वो अल्लाह ने दे दिया। इस उम्मत में जो आदमी अल्लाह के रास्ते में निकल कर चलेगा, अल्लाह ताला ऐसी दुआएं बनु इसराइल के नबियों की तरह कबूल करेगा। ये जमात में निकल कर अमाल की पाबंदी करें और अल्लाह से तहज्जुद में दूसरे औकात में कहें अल्लाह तूने यहाँ तौफीक दी, घर भी तौफीक दे दे, यहाँ गश्त करवाया घर भी तौफीक दे दे, यहाँ रोज मेहनत की चार पाँच घंटे तौफीक देता है अल्लाह घर जाकर भी ढाई घंटे की तौफीक दे दे, अल्लाह यहाँ पर तालीम की तौफीक देता है घर पर भी पाबंदी से तालीम की तौफीक दे दे। बोलो अल्लाह से मांगोगे तो अल्लाह तौफीक देगा कि नहीं देगा, जमेगा कि नहीं जमेगा। जमने का नाम तो दीन है, जमने का नाम क्या है बोलो, कभी किया कभी छोड़ दिया, इसको दीन थोड़ा कहते हैं। सोचते कोई दुकान कभी खोले कभी ना खोले, इसको मार्केटिंग कहते हैं, इसको मार्केटिंग कहते हैं, ये मार्केटिंग हो रही है। अरे ये तो कभी खुलती है कभी नहीं खुलती है, कभी करे कभी ना करे, इसको अमल नहीं कहते, उसको दीन नहीं कहते। दीन तो वह है जिस पर आदमी पाबंद हो। हाँ ये गश्त के दिन में भी पाबंद है कि आज मंगल है गश्त का दिन है, घर की औरतें भी कहते हैं कि आज तुमने मगरब पछी घर नहीं मले, क्या ये मस्जिद में गश्त नहीं हो त्या जैसे के जाओ, हमें तुमने पथरा पर लखिया किया त्या जैसे भी कोई जगह नहीं मले तुमने। मोहल्ले का आदमी भी कहे बाजार का आदमी भी कहे वो कहाँ नहीं मिलेंगे, वहां मस्जिद में मिलेंगे, इनका गश का दिन है, इनका चौथा हफ्ता है ना, ये तीन दिन जमात में होंगे, ये कहीं नहीं होंगे, इसको पाबंदी कहते हैं। ये निकलने की बरकत से अल्लाह पाबंद बनाएगा और इलाकों में चल फिर कर मेहनत करोगे तो अल्लाह ताला ऐसी नेकी जारी कर देगा, मरेंगे कब्र में लेट जाएंगे इसका अजर व सवाब वहां कब्र में लेटे लेटे मिलेगा। कभी झारखंड से आ रही है कभी बिहार से आ रही है, कभी नेकियों का बहाव धोध आ रहा है कहां से, तमिलनाडु से आ रहा है, कभी कर्नाटक से आ रहा है, कभी कश्मीर से आ रहा है, मुल्कों में गए फलाने मुल्क से आ रहा है। भाई ये सब क्या है, चार महीने में वहां नेकी के बीज डालकर आए थे, मेहनत के बीज डालकर आए थे, वो मेहनतें उग रही है, वो नेकी उग रही है। हाँ अल्लाह से बड़ा सखी दाता कोई नहीं है। हाँ और अल्लाह से अपनी अल्लाह से ज्यादा अपनी बात में पक्का कोई नहीं है, अल्लाह से ज्यादा अपनी बात में सच्चा कोई नहीं है। वमन असदकु मिनल्लाहि कीला, इसका वादा है जो खैर का जरिया बनेगा तो खैर करने वाले को इतना अजर, और मेरे भाइयों जो जरिया बना है उसको भी क्या मिलेगा बोलो, इतना ही अजर। हमारे चार महीने लगे, चंद हजार रुपये भी लगी और कब्र में आदमी सोया हुआ है, चारों तरफ से नेकियों का धोध आ रहा है, अजर का धोध आ रहा है, फरिश्ते खुशखबरियां सुना रहे हैं। हाँ ये असली चीज है, ये कमाई है, ये इज्जत है, ये कामयाबी है, ये राहत की बात है, ये आखिरत में सुरखरो इज्जत की बात है। करोड़ों इंसानों के दरमियान में अल्लाह शाबाशी देगा, है ना, यहाँ सम्मान होता है 5-25 के दरमियान तो आदमी के फोटो खींचते हैं मोबाइल में सेव कर देता है, नादान आदमी फ्रेम में मड़ा के रख देता है घर में कि मरु शाल उड़ाड़ी ने सम्मान करे लो, कह आगा के 5-25 गधेड़ा बैठे ले हमने बच्चे के नादान आदमी इसको इज्जत समझता है, इज्जत तो अल्लाह देगा। हाँ जाओ आओ आओ आओ, हाँ चार चार महीने लगाए थे, इसकी वजह से इलाकों में मेरे बंदों को अंदर गफलत दूर हो गई थी। हाँ मेरे बंदों से तुमने समाधान करवा दिया मेरे से, कहीं इतनी बड़ी नेकी तुम्हारे खाते में, अल्लाह ताला सम्मान करेगा, किसके बीच में करेगा, लाखों करोड़ों अबजों पदमों खरबों इंसानों के बीच में सम्मान करेगा। यहाँ 5-25 के बीच में तेरा साल उड़ाकर सम्मान होता है, फूला नहीं समझता है, फोटो खिंचवाता है, हैं घैम में मड़ाकर घर में रखता है, 5-50 को कहता फिरता है, पेपरों में दिलवाता है, इसको सम्मान समझता है, नादान है, बड़ा सम्मान को अल्लाह करेगा, अल्लाह शाबाशी देगा, शाबाश ये मेरा बंदा मेरे काम का है। बड़े मैशर में अल्लाह सबके सामने इस आदमी का सम्मान करेगा। मेरे भाइयों ये कमाई है असल। हाँ गफलत से निकलो, समझो बात को। हाँ बाकी दुनिया में सब ढकोसलेबाजियां हैं, मन को समझाने की बातें हैं, نادان انسانوں کے بنا ہوئے سب کچھ یہ ہے. اصل چیز آخرت ہے, اور خدا جسے آخرت میں عزت دینا طے کر دیتا ہے اللہ دنیا میں بھی اس کو عزت دار بنا دیتا ہے. یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے. جو خدا پاک دنیا میں اپنے بندے کو عزت راحت دینا چاہتا ہے اللہ اس کی بوندا باندی کیا کرتا ہے بولو, دنیا میں بھی کر دیتا ہے, اس کی چھینٹے دنیا میں ہی مار دیتا ہے. چلے بھائی, یہاں بھی عزت مل جاتی ہے, یہاں بھی راحتیں مل جاتی ہیں, یہاں بھی اللہ تعالیٰ اس کو سکون چین دے دیتا ہے. خدا اس بندی کو تنگی میں نہیں رکھتا ہے, اس کی بوندا باندی ہے, کیونکہ اس کے نیکی کا اصل اجر تو اس کو آخرت میں دینا ہے. دنیا تو اس کے لینے کی جگہ ہی نہیں ہے, یہ پوتھوی کے گولے میں اتنی جگہ ہی نہیں ہے کہ مومن کو ایک سبحان اللہ کہنے کا اجر دیا جائے. یہ پورا پوتھوی کا گولا جس کو میں آپ کہتے ہیں نا, تین بھاگ میں پانی نے ایک بھاگ میں زمین میں, مسلمان کی ایک سبحان اللہ کے اجر کے اٹھانے کی پوتھوی کے گولے میں طاقت نہیں ہے. یہاں تھوڑی بوندا بادی چھینٹا مار دیتا اللہ, کیا کر دیتا ہے, چھینٹے مار دے, لے لے لے, تاکہ یہ بندہ پریشان نہ ہو, سکون راحت لے. اور اصل کہاں دے گا بولو, اصل چیز اللہ کھولے گا آتے رکھنے کے لئے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا مُلْكًا كَبِيرًا. ایک ایک آدمی کے پاس پوری پوری سلطنت ہوگی, کیا ہوگی بولو, ہاں, گام کا دھنی نہیں, نگر سیٹھ نہیں, سمجھتے ہو, پورے پوری سلطنت بادشاہت اس کے قبضے میں ہوگی, پورا ملک جدھر دے گا ادھر نعمتوں کی بوچھار, نعمتوں کی بھرمار. ایک ایک آدمی, وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. بڑی سلطنت, بڑی بادشاہت, یہ اکیلا بادشاہت. تو میرے بھائیوں یہ کرنا ہے, طے کرتے اس کے لیے, ارے تمہاری انشاءاللہ کے اندر کرنٹ نہیں ہے, چائے پی کے نہیں پی ہے تم لوگوں نے کہ چائے پیا کر بیٹھ گئے ہو, طے کرتے ہو, ہاں, اب کیسے کرو گے, ہمارے اجتماع سے چار شہر میں لے جاؤں گے, آئے تھے تین دن کے لیے, ہے نا, اجتماع کا بستر لے کر آیا ہوں تین دن کے لیے, لیکن طے کرو, کوئی بڑی بات نہیں, ابھی دعا تو کل ہے, جانا پرسو ترسو ہے, پوری تیاری اللہ کرونے کا موقع دے دے گا. لیکن آتی گانٹھ مارے, کیا مارے بولو, بولتے گانٹھ مارے, جانا ہے ختم. ہاں, ایک آدمی اپنے دل سے گانٹھ مار دیتا ہے کہ مجھے نکلنا ہے, دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہلا نہیں سکتی ہے, اور بات بنے گی نکلنے سے, بات بنے گی کس سے بولو, نکلنے سے, نقل و حرکت کرنے سے, کہ ہم سب نقل و حرکت کریں, چلیں پھرے, یہ زندگیاں مختصر تھوڑی سی ہے, کب پوری ہو جاویں دنیا سے, میں اب چلے جاؤں میں کوئی پتہ نہیں, جو موت آ گئی ختم ہو گیا, اس کا دفتر بند ہو گیا. حدیثوں میں ہے کہ ہر آدمی کے پاس دو فرشتے ہوتے ہیں, جب موت ہو جاتی ہیں اس کا نام اعمال بند کر دیتے ہیں, لوگ تو اس کو دفن کر دیتے ہیں, وہ فرشتے قیامت تک قبر کے پاس نماز پڑھتے رہتے ہیں. پھر کب آئیں گے کہ یہ جب محشر میں اٹھے گا کہ اس کے ساتھ دونوں فرشتے اس کے ساتھ چلیں گے, چلے بھائی چل, دنیا میں تیرے ساتھ تھے, تو مر گیا تو وہیں قبرستان میں پڑے پڑے ہم بھی نماز پڑھتے رہے, انتظار کرتے ہو کہ تو دوبارہ کب اٹھے, اب ٹوٹ گیا, ہم تیرے ساتھ محشر کے میدان میں, یہ سب اللہ کو کہیں گے. یہ نندا سا, یہ ہمارے سر کے اس قصے کے اندر آئے تھے, اور اجتماع میں تین دن کے لیے آئے تھے, اور اللہ اس نے طے کیا چار مہینے کا, یہ گواہی دیں گے اللہ کے سامنے, چار مہینہ طے کیا, بندے کے پاس کپڑے بستر تین دن کے تھے, خرچہ تین دن کا تھا, لیکن طے کر کے ماشاءاللہ اس نے چار مہینے کا عزم کیا, ارادہ کیا, اور اجتماع سے چار مہینے چلا گیا. اچھا, اللہ میں کہا لو بھائی بات بن گئی, اس کی تو کیا بن گئی بولو, زندگی تو لگنے والی چیز ہے, حضرت یسوع رحمۃ اللہ فرماتے تھے جان مال لگنے والی چیز ہے, چاہے کہیں بھی لگا دو, دین کے لیے لگا دوں گے تو اپنا دین بنے گا, اللہ کے بندے بندیوں کا دین بن جائے گا, اپنی بھی راحت دوسروں کی بھی راحت. حضرت فرماتے تھے جیسے برف کی سیل فیکٹری سے نکلے تو اس کا کام ہے پگھلنا, کترا کترا کترا, ٹیپا ٹیپا ٹیپا, پگھل کر پانی ہو جاتی ہے. ہاں, یہ زندگی کا روز صبح سورج نکلنا سورج ڈوبنا, یہ زندگی ختم ہو جائے گی. لیکن جیسے برف کی سیل کو کوئی آدمی سڑک پر ڈال دے, پگھلے گا وہ بھی, लेकिन वहां पिघलेगा तो कीचड़ बनेगा, ले जाने वालों के पैर फिसलेंगे, कपड़े खराब होंगे, है ना। हाँ, और उसी बर्फ की सिल को उठाकर आप पिपले में रख दो पानी के, बोलो पचासों का कलेजा ठंडा करेगा। ये जान माल लगने वाली चीज है, कहीं भी लगा दो, दुनिया पर लगा दो तो यहां रह जाएगा, मौत के बाद कुछ नहीं आएगा, मौत के बाद कोई नहीं आएगा कब्र पर, एक चीज भी कब्र में नहीं आएगी। किसी के जनाजे में नोटों के बंडल देखे, बोलो ना तुमने नोटों के बंडल देखे, 100 बीघे जमीन का मालिक है, इसका दस्तावेज देखा, ओरिजिनल कॉपी इसके जनाजे में रख दिया, रख लो बाबा के जनाजे में, या क्या करने, नीचे फरिश्तों को दिखाएंगे, इनके काम देगा ये सब, मेरा आपका कमाया धरा धरा यहां रह जाएगा। आदमी नादा ने अपने अपनी दुनिया बात करने के लिए उम्र लगा देता है, सब खपत कर, नीचे जो 8-10 फीट के बाद बरसक है और मरने के बाद जो आखिरत है उसकी आबादी के बारे में मैं आप इंशाल्लाह माशाल्लाह करके रह जाते हैं, इंशाल्लाह माशाल्लाह करकर बैठे रहते हैं। अरे भाई कदम उठाओ, इंशाल्लाह माशाल्लाह से काम नहीं बने, जबान हिला दे वो तो काम बनेगा, खड़े हों कदम हटावे चले अंदर की पक्का इरादा। मैंने कहा गांठ मार कि नहीं कुछ भी हो जाऊंगा मैं, सब गांठ मारते हैं इंशाल्लाह। अब बताओ इसमें से कौन कौन 4 महीने के लिए तैयार है, खड़े हो जाओ अपनी जगह पर, खड़े हो जाओ कहीं के भी हो, हमारे 3 जिलों का इज्तिमा है, इन 3 जिलों में से किसी की जगह के हो अपनी जगह खड़े हो जाओ, माशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमावे। इस्तेमा के लिए आए थे लेकिन तय करो, इस्तेमा के लिए आए थे लेकिन तय करो, इस्तेमा से इंशाल्लाह नकद 4 महीने जाना है, कैसे जाना है वो इंशाल्लाह इसकी तरतीब बनाएंगे। हाँ, हम आपके साथियों से आपकी इंशाल्लाह तरतीब बनाने का मशवरा करेंगे। हाँ, कोई चीज उजाड़ कर नहीं जाना है, सब चीज मुरतब करके जाना है। अल्लाह आप तय करोगे ना तो अल्लाह राहें खोल देगा। आप सब तश्कीलों में चलते फिरते हम समझाते हैं, एक आदमी रेल की 2 पटरी के बीच में खड़ा रहे और सामने देखें तो ऐसा नजर आता है कि रेल के दोनों पाटे आगे जाकर जमा हो गए, रेल के दोनों पाटे आगे आकर क्या हो गए बोलो, ऐसा नजर आता है। लेकिन जब आदमी चलता है तो कहीं भेगे होते ला, कहीं जमा होते नहीं। बस बात यही है, तय करो पहले जाना है, सारे काम अल्लाह आसान कर देगा। और करो हिम्मत इरादे, और करो नीयतें माशाल्लाह, और करो हिम्मत, और कौन हिम्मत करता है, और कौन तय करता है। तीन जिले का मजमा हमारा है माशाल्लाह, और तीनों जिले के बहुत अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, अच्छे भले मुसलमान बंदे हैं। और कौन तय करता है, करो हिम्मत, करो तय करो। आए थे 3 दिन के लिए इस्तेमा के लिए लेकिन तय कर लिया, इंशाल्लाह 4 महीने कर लिया। अच्छा, इसमें वो लोग भी है जो चिल्ला जाने वाले, वो भी तय करो कि भाई चिल्ले के लिए आए हैं, चिल्ले का बिस्तर, चिल्ले के कपड़े, चिल्ले का खर्चा, चिल्ले की तैयारी। और मेरे भाइयों, जो अल्लाह आपके लिए चिल्ला आसान करेगा वो मस्जिद 2 चिल्ले आसान नहीं करेगा, जरूर आसान कर देगा। आप चिल्ले की नियत को डाइवर्ट कर दो मस्जिद 2 चिल्लों में, 3 चिल्ले मुकम्मल कर दो। ऐसा कौन कहता है कि मैं आया था चिल्ले के लिए, 2 चिल्ले और बढ़ाकर इंशाल्लाह 3 चिल्ले पूरा करके जाऊंगा। लो और करो हिम्मत, इसमें कौन ऐसा कहता है, आया था वे चिल्ले के लिए, मेरा बिस्तर भी चिल्ले के लिए, खर्चा भी चिल्ले के लिए, तश्कील वालों को भी मैंने गांव से चिल्ले के लिए नाम लिखा है, लेकिन तय करता हूं इंशाल्लाह 4 महीने पूरा करूंगा। ऐसा कौन कहता है, इसने तो घर छोड़ी है, घर छोड़ा ही है, इसके लिए घर छोड़ने का कोई मुजाहदा नहीं है। कौन कहता है इंशाल्लाह कि मैं 3 चिल्ले पूरा करके जाऊंगा। अच्छा, आप हजरत आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, तफसीली कमरा का है तुम्हारा। हाँ, आ जाओ, आप लोग आगे बढ़ जाओ भाई, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। अच्छा, ये सब आपके भाई हैं ना, आपको पहचानते हैं ना, ये कोई पहाड़ पर से लंगोटा बांधकर उतरे हुए कोई साधु सन्यासी तो है नहीं, है ना? ये कौन है? है ना? हमारे जैसे हमारे भाई हैं, बी बच्चे वाले हैं, है ना, काम धंधे वाले लोग हैं। इन्होंने एक बात तय की, जाना है तो अल्लाह ने इनके लिए आसान कर दिया। आप लोग भी तय कर लो तो अल्लाह आपके लिए भी आसान कर देगा, है ना? तो एक काम करो, देखो ज्यादा नहीं, क्योंकि आगे अमल के अंदर जुड़ना है हम सबको। हम जहां जो बैठा है, ओ चाचा, ओ चाचा, चाचा थोड़ी देर, कोई तकलीफ लो तो बैठ जाओ, कोई तकलीफ लो तो बैठ जाओ, पेशाब लगी है, हाँ जाओ, अब बूढ़े आदमी है, चले जाओ। आप जितने बैठे हैं ना, तो बैठे बैठे चार चार पांच पांच अपना हल्का लगाओ। देखो बात सबके समझ में आई है, लेकिन थोड़ा क्या है, थोड़ी पीन मारने वाला आदमी चाहिए, हिम्मत दिलाने वाला आदमी चाहिए, है ना? तो एक दूसरे को हिम्मत दिलाओ, तू हिम्मत कर ले, अल्लाह तेरे लिए आसान कर देगा, समझे ना? अपने भाई को समझाओ, इसका जहन बनाओ, उसको हिम्मत दिलाओ, नकद तैयार करो, और जब तैयार हो जाए उसको आगे भेज दो। अब बैठे बैठे चार चार पांच पांच के हल्के बना दो, कोई शोर ना हो, बैठे बैठे। देखो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, तीन चार मिनट, तो मुझे भी पेशाब लगी है, मैं भी शुगर का मरीज हूं। बैठे बैठे, वो पीछे वाले भाई, आप सबसे कह रहा हूं, बैठे बैठे एक दूसरे को समझा दो, एक दूसरे की हिम्मत अफजाई की बात करो। माशाल्लाह, देखो कितने अच्छे लोग हैं, फौरन माशाल्लाह हल्के बना लिए। अल्लाह आप सबको जजाए खैर दे।